الحمد لله وكفى وسلام على الصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو ہم پچھلی کلاس میں سورۃ الانبیاء کی ان آیات 92 سے 105 92 سے 105 جو آیات میں ان کا ترجمہ پڑھ چکے تھے اور خلاصہ تفسیر ہم نے شروع کر لیا تھا. ہم وہاں سے آگے چلتے ہیں جہاں پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا کہ خلاصہ تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ ان کی بیان القرآن سے دی گئی ہے، تو اس میں ان آیات کے تحت حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون، کہ ان لوگوں نے اپنے معاملے کو، اپنے امر کو مطلب اپنے معاملے کو، اپنے امور کو، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ان کے امور ایسے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں، تو انہوں نے ان کو قطع قطع کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا آپس میں. ٹھیک ہے، کسی نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا، کسی نے اپنا دوسرا فرقہ بنا لیا، کسی نے تیسرا فرقہ بنا لیا. کلن الینا راجعون، لیکن یہ سارے کے سارے ہماری طرف ہی پلٹنے والے ہیں. والیوم تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی کم والیوم کی شکایت ہے، یا صرف انہی کو ہے، ہو سکتا ہے پھر ان کا لوکل کوئی پرابلم ہو والیوم کا، کسی اور کو ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ جی آواز بہت ہلکی ہے، کلیئر ہے؟ نہیں جی، تو آپ کا پھر اسپیکر کا کوئی مسئلہ ہے، لیپ ٹاپ یا جو بھی فون وغیرہ کا، اس کو پھر آپ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں یا اپنی ڈیوائس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جو سارے فرقے بنا لیے، یہ سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، بس جو نیکی کا کام کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا. فلا کفران لسعیہ، تو اس کی جو محنت ہے نا، تو وہ اکارت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، وإنا له کاتبون، اور ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا، مگر اس کی سزا دیکھیں گے، کیونکہ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں اور آنے کے بعد ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا. تو جو شخص نیک کام کرتا ہوگا اور وہ ایمان والا بھی ہوگا، تو اس کی محنت اکارت جانے والی نہیں ہے. لا کفرانہ لسعیہ، سعی محنت کو کہتے ہیں، تو اس کی محنت اکارت جانے والی نہیں ہے. ہم اس کو لکھ لیتے ہیں جس میں بھول اور خطا کا امکان نہیں رہتا، اس لکھے ہوئے کے مطابق اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. کرامن کاتبین، جو کہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، محسوس نہیں ہوتے، لیکن فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، فرشتے تو ویسے بھی نوری مخلوق ہیں اور ان کو ہم محسوس دراک ان کا نہیں کر سکتے، لیکن خبر سے پتا چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خبر سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ موجود ہیں اور ہر چیز لکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ بھئی وہ فرشتے لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یاد رہے گا، اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا، اور اگر فرشتے نہیں لکھیں گے تو اللہ، نعوذ باللہ، اللہ بھول جائیں گے یا اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ جو بھی کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ لکھوا رہا ہے. یہ بس اللہ تعالیٰ کا سیٹ کیا ہوا ایک نظام ہے، ان کو کہتے ہیں اسباب. ٹھیک ہے، یہ اسباب کا نظام ہے کہ لکھ لیا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، ڈپینڈ نہیں کرتے اسباب کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی حاجت نہیں ہے، بغیر اسباب کے بھی اللہ کا کام چلتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک آیت مبارکہ ہے اور اس کا جو ظاہری ترجمہ یا مفہوم بنتا ہے وہ کیا ہے کہ جی سب نے اپنے فرقے بنا لیے، ٹھیک ہے نا، سب نے اپنے فرقے بنا لیے، تو جب سب نے اپنے فرقے بنا لیے تو مسلمانوں نے بھی ایک فرقہ بنا لیا، رائٹ، یہودیوں نے بھی ایک فرقہ بنا لیا، عیسائیوں نے جیسے فرقہ بنا لیا اسی طرح مسلمانوں نے بھی ایک فرقہ بنا لیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کرو ایسا کرو اور اس طرح عبادت کرو، اس طرح بتوں کی پرستش نہ کرو اور ایسا ہے اور ویسا، بھائی یہ بھی تو ایک فرقہ ہی ہے نا، جس طرح باقی فرقے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے نا پھر کسی فرقے کو فالو نہیں کرتے، ہے نا، ایسے ہوتے ہیں نا کچھ زیادہ ڈیڑھ ہوشیار، ڈیڑھ ہوشیار جن کی، ڈیڑھ ہوشیار کا لفظ استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں، ایسی ہوشیاری جو کہ ٹوٹی ہوئی ہو، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، ایک ٹانگ پوری ایک ٹانگ آدھی، اس کو کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار، ٹھیک ہے. تو ڈیڑھ ہوشیاری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو ساری فرقے ہیں تو ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، ہم بس جو جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں نا، جو چیز نیکی کا کام ہے ہم وہ کرتے رہیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے رہیں گے، ہم کسی آرگنائزڈ ریلیجن، ہم کسی باقاعدہ یعنی ایک دینی نظام کا حصہ نہیں بنتے، کیونکہ سارے کے سارے فرقے ہیں انسانوں کو آپس میں توڑنے کے لیے بنائے گئے، ٹھیک ہے، انسانوں کو آپس میں توڑنے کے لیے انسانوں نے بنا لیے. یہ بہت بڑا ایک اوپینین ہے لوگوں کے درمیان، دنیا کے اندر اس قسم کی ایک سوچ موجود ہے اور بہت زیادہ لوگ آج کل اس سوچ کو سبسکرائب کرتے ہیں، سوچ کو بلونگ کرتے ہیں کہ سارے دین جو ہے نا یہ تو انسانوں کو توڑنے کے ایک بہانہ ہے، ہم کسی سے تعلق نہیں رکھتے، ہم بس اچھا کام کریں گے. بڑا اچھا لگتا ہے یہ بات، بڑا اچھا نعرہ لگتا ہے کہ جی ہم نیکی کرتے رہیں گے، یعنی ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سے معاملات کرتے رہیں گے. ہے نا، آپ امریکہ میں چلے جائیں، بڑے نائس، ہے نا، بڑے نائس لوگ آپ کو نظر آئیں گے، خصوصاً گوروں کے اگر آپ علاقے میں جائیں، یورپ میں چلے جائیں، ہے نا، وہاں پہ تو ویسے ہی گورے ہی ہوتے ہیں، امریکہ میں گوروں کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان جگہوں پہ جائیں تو آپ کو بڑے اچھے خوش اخلاق قسم کے لوگ ملیں گے، بڑا نائس، ہیلو ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کین آئی ہیلپ یو، اس طرح کے بڑے نائس. تو اتنے اچھے لوگ تو ہیں، یہ دین وین کی کیا ضرورت ہے خام خواہ، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن مجید یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو فرقے بنا لی ہیں نا، تو جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا، وہ مومن، وہ مومن، ٹھیک ہے، تو اس کی محنت کو ہم ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک. تو قرآن مجید جو آج کل دنیا کے اندر رائج سوچ ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور بس کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید اس سوچ کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن مجید اس سوچ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ مومن. کیا مطلب؟ کہ یہ جو نیکی کا کام ہے نا، نیکی کا کام، یہ تو صرف وہ نیکی کا کام ہے کہ جو کہ رسول نے بتایا ہے، جو کہ رسول نے بتایا، جو رسول نے بتایا کہ یہ نیکی کا کام ہے، صرف وہ نیکی کا کام ہے، اور اس کے علاوہ جو انسانوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، وہ نہیں ہے. مؤمن، مؤمن کا مطلب کیا؟ رسول کی بات کو ماننے والا، ٹھیک ہے. تو رسول بتائیں گے نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہے نا، اپنی طرف سے نہیں سوچ کر کے، ہاں بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے تو میں وہ کروں گی، یا میں وہ کروں گا، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ نیکی کا کام ہے تو میں نہیں کروں گی. نہیں، ایسا اگر کرو گے تو تمہاری چیزیں جو ہے نا وہ ضائع، ٹھیک ہے نا، تمہارے محنتیں ضائع ہو جائیں گی. کفران لسعی، ٹھیک ہے، لا کفران لسعی کے لیے کیا شرط ہے کہ محنتیں ضائع نہ ہوں، اس کے لیے کیا شرط ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، رسول کی بات ماننے والا اگر ہوگا تو لا کفرانہ رسالہ، ٹھیک ہے. تو گاندھی جی جو ہے نا، گاندھی جی مثال کے طور پر، انڈیا والے جو ہیں وہ گاندھی جی، بڑا زبردست قسم کا گاندھی جی ہے نا، وہ ہر وقت گاندھی گاندھی، مسلمان بھی گاندھی گاندھی کرتے رہتے ہیں، और भाई गांधी जो है ना, वो जैसा भी था दुनिया में, उसने कुछ अच्छी बातें अगर कर भी दी ना, सब कुछ जीरो, उसका सब कुछ जीरो है। मरने के बाद कुछ उसको फायदा नहीं, कुफर के ऊपर मौत उसकी तक यानी कंफर्म ही है। कोई किसी किस कभी किसी किस्म की कोई खबर किसी तक पहुंची कि जी नहीं, गांधी मुसलमान हो गया था? गांधी छोड़ो, कोई और आप इंटेलेक्चुअल, कोई वो चाइनीज इंटेलेक्चुअल उठा के लेने, या कोई बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल, बुद्धिस्ट जो है वो नेक आदमी, या कोई और किसी की भी बात, मौत के साथ सब खत्म। ठीक है ना? क्या है सूरह कहफ की आखिर में आयत क्या है? फला नुकीम लहुम यौमल कियामती वजना, हम उनके किसी अमल का कयामत के दिन वजन ही नहीं करेंगे, वजन ही नहीं करेंगे। ठीक ना? चाहे उसने दुनिया के अंदर लोगों के साथ कितनी भलाई करी हो, कुछ भी किया हो उसने, कोई वजन नहीं है उसका, क्योंकि वो मोमिन नहीं था। ठीक है? मुसलमान का क्राइटेरिया जो है ना, वो तो कुरान है, राइट? मुसलमान कुरान की बुनियाद पर सही और गलत का फैसला करता है ना, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताया। ठीक है? मुसलमान अपनी सोच और अपनी फिक्र और अपनी चाहतों के मुताबिक कोई थोड़ी फैसला करता, और जो करता है तो वो फिर क्या है, फिर वो मुसलमान है क्या है? ठीक है? तो अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना, वो उसूल ईमान है। ईमान है तो फिर ठीक है, ईमान नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। और हमने आगे फरमाते हैं कि और हमने जो ये कहा है कि सब के सब हमारे पास आने वाले हैं, उसमें मुनकरीन ये शुबो करते हैं कि दुनिया की इतनी उम्र गुजर चुकी है, अब तक तो ऐसा हुआ नहीं कि मुर्दे जिंदा हुए हों, उनका हिसाब हुआ हो। तो उनका ये शुबो इसलिए गलत है कि अल्लाह की तरफ लौटने के लिए एक दिन मुकर्रर है, एक दिन कयामत का मुकर्रर है, उससे पहले कोई नहीं लौटता। ठीक है? यही वजह है कि हम जिन बस्तियों को अजाब या मौत से फिना कर चुके हैं, उनके लिए ये बात इम्तिनाए शरई नामुमकिन है कि वो दुनिया में हिसाब किताब के लिए फिर लौट कर आए। ये फरमाया ना, हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजून हत्ता इजा फुतिहत याजूज माजूज। अब उसकी बात हो रही है। ठीक है? ये जो दुनिया वाले, ये हजरत तफसीरन लिख रहे हैं ना, ब्रैकेट्स के अंदर तफसीर होती है, खुलासे तफसीर, कि ये लोग जो कहते हैं ना कि अभी तक तो हिसाब किताब हुआ नहीं, हजारों साल से दुनिया कायम है, और ये नबी आकर के बोलते रहते हैं कि जी हिसाब किताब का दिन आने वाला है, हिसाब किताब का दिन आने वाला है, इतने हजार साल गुजर गए अभी तक तो आया नहीं, तो ये कभी आएगा ही नहीं। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, एक दिन है जिसमें ये सब कुछ होगा। ठीक है? तो उससे पहले हिसाब किताब, वो वाला हिसाब किताब जो जो में हशर वाला है ना, वो उससे पहले नहीं होने वाला है। बस अभी क्या हो रहा है दुनिया में, अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, अभी दुनिया में जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो ये है कि लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। ठीक है ना? दुनिया के अंदर एक हलाकत मिल रही है उनको, जो बात नहीं मान रहे, जो इनकार कर रहे हैं, तो दुनिया में वो हलाक किए जा रहे हैं और उनको आगे भेजा जा रहा है अगले जहान में, जो जिसको के यौमे बर्ज, जो आलम बरजख कहा जाता है, जिसको जिसको कब्र का आलम कहा जाता है, आलम बरजख भी कहते हैं और कब्र भी कहते हैं उसको, आगे जा रहे हैं। चलो भाई आगे चलो, आगे चलो। ठीक है ना? सबको आगे भेजा जा रहा है। अभी वो वाला जो अल्टीमेट हिसाब किताब वाला दिन है ना, वो आई ही नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ट्रांजिशनरी हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क जाते हैं। ठीक है? तो स्पेशली जैसे अमेरिका, यूरोप के किसी मुल्क जा रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है? एयरपोर्ट पे पहुंच करके इमिग्रेशन होती है ना, पासपोर्ट चेक करते हैं ना, वीजा चेक करते हैं ना। ठीक है? तो वीजा पासपोर्ट वगैरह चेक करके और आपका यानी काफी चीजें देख लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना, जो जिसके पास सही वीजा होता है, जिसके पास जो है वो पासपोर्ट अनएक्सपायर्ड होता है, वो उसको फिर जहाज में सवार कर देते हैं। ठीक है ना? अब ये जहाज में सवार तो हो गया और चेकिंग वगैरह भी हो गई, लेकिन जब ये जहाज डेस्टिनेशन पे उतरेगा, अब वहां पर असल इमिग्रेशन होगी, राइट? सऊदी अरब जा रहे हैं तो सऊदी अरब के एयरपोर्ट के ऊपर असल इमिग्रेशन होगी, है ना? यूरोप जा रहे हैं तो किसी यूरोप के मुल्क के एयरपोर्ट के ऊपर असल इमिग्रेशन अभी बाकी है। हालांकि इनिशियल इमिग्रेशन हो चुकी है आपके पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर या इंडिया के एयरपोर्ट के ऊपर हो चुकी है, वहां पर भी एक अलग अलग किया जा चुका है ना, जिसके पास सही था उसको आगे कर इधर कर दिया गया, जिसके पास गलत था उसको दूसरे रास्ते पे चला दिया गया, ठीक है। लेकिन असल इमिग्रेशन तो वहां पहुंच करके होगी, जब तक पहुंचेंगे नहीं उससे पहले नहीं होगी। अभी तो रास्ता है, जहाज के ऊपर आप सफर कर रहे हैं, जहाज पे सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही मामला जो है वो दुनिया के अजाब का या दुनिया के अंदर जो हिसाब किताब हो रहा है, ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर नहीं हो रहा, ठीक है, दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन असल नहीं है ये। असल तो होगा उस दिन जबकि वहां जाके लैंड करेंगे, ठीक है। और ये जहाज ऐसा है कि ये जहाज पे जो चला गया ना, अब वहां से वापस नहीं आने वाला है। ये नहीं है कि जहाज जो है वो रास्ते से मुड़ करके जो है वो दुनिया यानी आपके जो आपके मुल्क का एयरपोर्ट था उसके ऊपर वापस आ जाएगा, नहीं, ये वन वे जहाज है, ये बस उधर ही जाता है, ठीक है ना, उसी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ही जाता है, ठीक है। तो आपकी बरकत से जो है वो जिसके दिल में ये वाली मिसाल आई पहली दफा, कभी पहले नहीं सोचा था इसके बारे में, ठीक है। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो इमिग्रेशन लोकल एयरपोर्ट पर भी हो रही होती है, लेकिन असल इमिग्रेशन जो है ना वो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट के ऊपर हो रही होती है। और जो लोकल एयरपोर्ट की से निकल गया और जहाज पर सवार हो गया, अब जो है ना ला यरजिउन, वो वापस नहीं लौटा जाएगा, लौटाया जाएगा, ठीक है। तो अब वापस लौटाए जाने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, हत्ता इदा फुतिहत याजूज माजूज, जब तक के याजूज और माजूज नहीं खुल जाते, वहुम मिन कुल्ल हदब यंसिलून, और जब वो खुलेंगे ना तो फिर वो बहुत तेजी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे। तो उसके तहत हजरत लिखते हैं कि यहां तक के जब वो वक्त मौजूद आ पहुंचेगा, जिसका इब्तदाई सामान ये होगा कि यानी इब्तदाई उसकी एक निशानी ये होगी कि याजूज माजूज जिनका अब सद्दे ज़ुल्करनैन के जरिए रास्ता रुका हुआ है वो खोल दिए जाएंगे, और वो इंतहाई कसरत के सबब हर बुलंदी टीला और पहाड़ से निकलते मालूम होंगे, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करनी है तो इस वजह से यहाँ पे मजीद अभी तफसील दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। तर्जुमे में कुछ बात हो चुकी थी याजूज माजूज के बारे में, और बाकी इंशाल्लाह मारूफ मसाइल में करेंगे। अच्छा, और उसके बाद वक्तरबल वादुल हक को, ठीक है, फइज़ा हिया शाख़िसतुन अब्सारुल्लज़ीना कफ़रू, और अल्लाह की तरफ लौटने का सच्चा वादा नजदीक आ पहुंचा, इक्तरबा, नजदीक आ पहुंचा, तो बस फिर यकायक ये हालत हो जाएगी कि मुनकिरों की निगाहें यानी जिन्होंने इनकार किया ना रसूलों का, जिन्होंने रसूलों का इनकार किया कि नहीं ये कोई अल्लाह के भेजे हुए नहीं है, ये कोई सच्ची बात करने वाले नहीं है, ये कोई हमें बताने के काबिल नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू टेल अस राइट फ्रॉम रॉन्ग, राइट, जिन्होंने इनकार किया। ये इनकार करने वाले इसी तरह की बातें करते हैं ना, ये तो हमारी जैसे एक इंसान है, इसको क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसको किसने ये हक दिया है कि क्या हमें बताए तो सही है गलत की तफरीक बताए, है ना, इसको फ्यूचर के बारे में क्या पता, है ना, ये होता है रसूलों का इनकार, ठीक है। तो ये जो इनकार करने वाले होते हैं इनको मुनकिर कहते हैं, इनकार करने वाला, ठीक है। तो मुनकिरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, है ना, उनका ये सारा इनकार जो है ना उस वक्त धरा का धरा रह जाएगा, और उनके सामने ये चीज खुल जाएगी कि यार ये सब कुछ जो उसने बताया था ना, वो जो रसूल जिसके कि हम मजाक करते थे जिससे, वो तो सब कुछ सही था, वो तो जो कह रहा था वैसे ही हमारे सामने आ गया। अब ये देख करके ना इनकी निगाहें जो है ना वो यानी इनके हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, और वो यूं कहते नजर आएंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हम इससे गफलत में थे, ठीक है ना, कमबख्ती, बख्त कहते हैं किस्मत को, ठीक है, तो कम किस्मती, बल्कि हकीकत क्या है, बदकिस्मती, बदबख्ती, ठीक है, यानी हमें तो बहुत ही बुरी किस्मत मिली, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ कि हमने जो है ना वो उसकी बात नहीं मानी, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज में किसी ने कुछ लिखा है तो वो पढ़ लेते हैं कि जब हम मैदान हशर में होंगे तब कब्र में अजाब मिला था या जन्नत की हवा, ये हम भूल जाएंगे। कब्र में अजाब मिला था या जन्नत की हवा मिली थी, ये हम मैदान हशर में जाकर के भूल जाएंगे। बज़ाहिर तो मैदान हशर के जो मुआमलात नजर आते हैं ना, तो उससे तो ऐसे ही लगता है कि हाँ पीछे का मामला भूल जाएंगे। उस वक्त के ऐसे हालात होंगे कि उस वक्त जो है ना, ये कब्र के अंदर क्या हुआ था उसको भूल जाएंगे। ठीक है, यानी एक तरह से इतना ज्यादा हौलनाक वो मामला होगा कि कब्र का अजाब भी भूल जाएंगे और कब्र का सवाब भी भूल जाएंगे। ठीक है, बताए ऐसे ही लगता है, बाकी वहां पहुंच के पता चलेगा भूले के याद रहा। तो हाय हमारी कमबख्ती, हम उससे गफलत में थे। फिर कुछ सोच कर कहेंगे कि इसको गफलत तो तब तो जब कहा जा सकता था कि किसी ने हमें आगाना किया होता। ठीक है, यानी ये जो ये लोग कहेंगे ना, कद कुन्ना फी गफलत मिन हादा, है ना, तहकीक कि हम तो इससे गफलत में थे कि हमारे आगे ये होने वाला है। ठीक है, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम जुल्म करने वाले थे। ठीक है, यानी थोड़ी देर में उनको एहसास हो जाएगा कि ये गफलत शफलत कोई नहीं थी। ठीक है ना, गफलत तो वो होती है जैसे कि आप जो है वो सो गए, है ना, अब सो गए और आपकी आंख नहीं उठी, आपकी आंख खुली ही नहीं, तो इस वजह से आपकी फजर कजा हो गई, या आपका कोई मीटिंग वीटिंग थी, आपकी आंख ही नहीं खुली, आपकी मीटिंग जो है वो मिस हो गई। ठीक है ना, इसको गफलत की नींद कहते हैं। ठीक ना, लेकिन कोई आकर के आपको झंझोड़ झंझोड़ के उठा रहा है ना, और आपको कह रहा है कि भाई फजर का वक्त हो गया है, उठ जाओ, और आप नहीं उठे, आप नहीं उठे, आप कहे नहीं, जाओ ना। जो कहते हैं ना, जब सख्त नींद आई भी होती है और कोई आके फजर के लिए उठा रहा है, या कोई आकर के किसी और काम के लिए उठा रहा है, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, मुझे सोने दो। ठीक है ना, तो ये वाली जो नींद है ना, ये गफलत की नींद नहीं है, बल्कि ये तो जुल्म है, यानी ये तो गुनाह है ना। आपको फजर का बोला गया है, बोला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, आपको झंझोड़ा जा रहा है, आपको उठाने की कोशिश की जा रही है, और आप इनकार कर रहे हैं, नहीं मुझे छोड़ दो, है ना। अच्छे मुसलमान होते हैं वो यही नहीं कहते कि नहीं जन पड़नी मुझे फजर, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा बागी किस्म के हो जाते हैं गुनाहों में, तो नहीं पड़नी मुझे फजर, ऐसा भी कह देना। तो भाई ये गफलत की नींद भी थोड़ी है, ये तो जुल्म है। तो थोड़ी ही देर में ना इनको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, गफलत का मामला है नहीं था हमारे साथ, हमारे साथ तो जुल्म का मामला था, यानी झंझोड़ने वाला, उठाने वाला, याद दिलाने वाला आया था हमारे पास और हमने उसकी बात नहीं मानी थी। ठीक है, तो बल कुन्ना जालिमी, बल्कि हम तो थे ही जालिम। सही है, तो इसी वजह से ना ये जो हमें जगाने वाले आते हैं ना, हमें समझाने वाले, हमें याद दिलाने वाले, तो बहुत हमें ना उस वक्त ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि ये जो अल्लाह ताला ने भेजा है ना हमारे पास, ठीक है, ये हमारे खिलाफ हुज्जत है ना। इसका इनकार अगर हम करेंगे ना, तो कल को हमारे पास फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो उनके साथ फिर बहुत तमीज के साथ रहना चाहिए और बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, अमल करना ये बात की बात है, असल में तो है बात मानना, यानी उनका इनकार ना करना, उनके साथ बदतमीजी ना करना, उनके साथ जो है ना वो इस किस्म की उल्टी सीधी बातें ना करना कि जो कि इनकार के अंदर आ जाती है, वरना फिर बंदा जालिम बन जाता है। ठीक है, और जालिम के ऊपर फिर पकड़ा जाती है। तो फरमाया कि तुम बल्कि हकीकत यह है कि हम ही कसूरवार थे। हासिल यह हुआ कि जो लोग कयामत में दोबारा जिंदा होने के मुनकर थे, तो वो भी उस वक्त इसके कायल हो जाएंगे। आगे मुश्रिकीन के लिए वही है। ठीक है, जब देख लेंगे अपनी आंखों से, अपने फाइव सेंसेस से उन चीजों को देख लेंगे ना, तो फिर उसके बाद मानना पड़ेगा, फिर इनकार करने की तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा उसके बाद। तो फरमाते हैं कि इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत किया करते थे। तो फरमाते हैं कि बिलाशुबा तुम और जिसको तुम खुदा के सिवा पूज रहे हो, सब जहन्नम में झोंके जाओगे और तुम सब इसमें दाखिल होगे। ठीक ٹھیک ہے. اس میں وہ انبیاء اور فرشتے داخل نہیں ہو سکتے کہ جن کو دنیا میں بعض مشرکین نے خدا اور معبود بنا لیا تھا، کیونکہ ان میں ایک مانع شرعی موجود ہے کہ وہ اس کے مستحق نہیں اور نہ ان کا اس میں کوئی قصور ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو نیک اولیاء یا انبیاء یا فرشتے، انسانوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ پوجنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے وہ مزار بنا لیے یا ان کے جو ہے وہ مورتیاں بنا لی، تصویریں بنا لی اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا. یہ سارے جو بت تھے نا، یہ کعبۃ اللہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کے باہر جو بت رکھے ہوئے تھے، یہ لات منات یہ عزا ہے نا نائلہ، یہ سارے کیا تھے؟ یہ انسان تھے. نائلہ تو خیر وہ تو ایک دوسرا ایک قصہ ہے اس کے اندر، لیکن یہ جو بت تھے نا لات منات یہ سب جو ہے نا یہ اصل میں انسان ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور نیک انسان ہوا کرتے تھے جن کی کہ لوگ عزتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب جب یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر لوگوں نے جو ہے نا وہ ان کی ان کو یاد کرنا شروع کیا، تو شیطان نے آ کر کے لوگوں کے دل میں بات ڈالی کہ بھائی وہ لوگ تمہیں اتنے یاد آ رہے ہیں تو تم ایسا کرو نا ان کی کوئی تصویر وصویر بنا لو، کوئی مورتی شورتی بنا لو ہے نا، تاکہ تمہارے لیے ان کو یاد کرنا آسان رہے. ٹھیک ہے، شیطان نے آ کر کے یہ بات لوگوں کے دل میں ڈالی. ٹھیک ہے، اور اس زمانے کے جو نیک لوگ تھے، جو کہ دین کی دعوت دینے والے لوگ تھے ہے نا، اس زمانے کے جو علماء تھے، انبیاء علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ان لوگوں نے ان کو منع کیا کہ نہیں، لوگوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کی مورتیاں بنا لو ہے نا. لیکن انہوں نے شیطان کی بات مان لی، ان لوگوں کی بات نہیں مانی، نیک لوگوں کی بات نہیں مانی اور مورتیاں بنا لی. پھر ان کو جو ہے وہ پہلے تعظیمن دیکھتے تھے، پھر ان کو ہاتھ لگانا شروع کیا، عزت کے ساتھ ہاتھ لگانا جس کو کہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ رکوع، رکوع کے بعد جو ہے وہ سجدہ. ٹھیک ہے، تو وہ پوری جو ہے نا وہ عبادت کی شکل بن گئی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ جو نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں، نیک لوگوں کی تصویریں تھیں، ان کی عبادت شروع کر دی لوگوں نے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جو ہے وہ ہندوازم کے اندر بھی ایسے ہی ہوا، بدھزم کے اندر بھی ایسے ہی ہوا، اور مشرکین مکہ نے بھی ایسے ہی کیا، اسی طریقے سے یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی ایسے ہی کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جن جن چیزوں کا جہنم میں ڈالا جانا کہا جا رہا ہے نا، تو یہ بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اصل میں فرشتوں کو یا انبیاء کو یا اولیاء کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں وہ انبیاء اور فرشتے داخل نہیں ہو سکتے کہ جن کو دنیا میں بعض مشرکین نے خدا اور معبود بنا لیا تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور دوسرے نیک لوگ، کیونکہ ان میں ایک معنی شرعی موجود ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کہ اس بات کو روک رہا ہے کہ یہ نیک لوگ جو ہے نا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہے اور اس کا ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آگے آیت میں ان الذین سبقت لهم سے بھی اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ تمہارے معبود واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں کیوں جاتے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے تو ان مرے ہوئے لوگوں کو معبود نہیں بنایا تھا، بلکہ انہوں نے کس چیز کو معبود بنایا تھا؟ ان پتھر کے لکڑی کے بتوں کو معبود بنایا تھا. اور جانا بھی ایسا، یعنی یہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، تو جانا بھی ایسا کہ چند روزہ نہیں بلکہ سب عابدین اور معبودین اس میں ہمیشہ کو رہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی تو ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جا رہی تھی وہ بھی، اور ان کا اس میں شور و غل ہوگا. اب یہ بعد میں جو ہے وہ جہنم کے اندر ان کے ساتھ ہوگا کیا، تو اس کا تذکرہ ہے. تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک چیز اور، کہ یہ جو معبود ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس سے مراد صرف لکڑی کے بت اور پتھر کے بت اور موٹے خدا اور چھوٹے خدا، جیسے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے وہ لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے بت تھے نا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا تھا اور ایک بڑے بت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. تو کیا صرف یہ لوگ مراد ہیں؟ بلکہ کچھ اور بھی اس کے اندر سے معنی نکلتا ہے، ایک اور بھی اشارہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، जो इन बुतों की इबादत करने वाले थे और जो बुत थे, ठीक है ना, ये तो जाएंगे जहन्नुम में। क्या इनके अलावा कोई और भी हैं कि जो के जहन्नुम में जाएंगे, जो के ना बुतों में आते हैं और ना इबादत करने वालों में आते हैं? वो कौन है जो कि ना बुतों में शुमार होते हैं और ना इबादत करने वालों में शुमार होते हैं? ठीक है, वो भी जहन्नुम में जाएंगे और उनको भी एक तरह का माबूद कहा जा सकता है। ठीक है, उनको भी एक तरह का माबूद कहा जा सकता है। वो कौन है? ठीक है, अच्छा, इन्होंने जवाब में लिखा है शयातीन और नफ्स। नहीं, नफ्स को, नफ्स में, नफ्स भाई, नफ्स कोई अलग से नहीं निकाल करके जहन्नुम में डाला जाएगा। जैसे कि किसी इंसान को जहन्नुम में अलग डाला जाएगा और उसके पेट में से उसका स्टमक निकाल करके अलग जहन्नुम में डाला जाएगा, नहीं, वो स्टमक उसके साथ ही जहन्नुम में जाएगा ना, है ना, उसका लंग, उसका उसका हार्ट उसके साथ ही जहन्नुम में जाएगा। तो उसी तरीके से नफ्स जो है ना, वो इंसान के साथ ही जाएगा। ठीक है, शयातीन सही है, ये आपका जवाब सही है। ठीक है, तो जैसे कि बाकी लोगों ने लिखा कि राहबर, राहबर भी कह सकते हैं, वो ऐसा राहबर का लफ्ज है, वो इधर अच्छे मानों में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर तो हम बुरे मानों की बात कर रहे हैं। हाँ, जो उनके पास जाने का रास्ता बताते हैं जी, उनके मुजावर, बुतों के मुजावर, ठीक है ना, ह्यूमन आइडल्स लाइक पॉप स्टार्स। अच्छा, पॉप स्टार्स जो हैं वो अगर मुशरिक हैं तो वो इबादत करने वालों में शामिल हो जाते हैं वैसे यूजुअली। ठीक है, तो उनकी तरफ बुलाने वाले, है ना, मुजावर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंसानी खुदा जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं, वो तो आपके वो पॉप स्टार्स उनमें हो गए, तो वो इंसानी खुदा जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं ना, जैसे कि आपके स्पोर्ट्स के हो गए, आइडल्स हो गए और दूसरे आइडल्स हो गए, तो वो आबिदीन में शामिल हो जाते हैं इबादत करने वालों में। ठीक है, तो जवाब इसका ये है शयातीन, शयातीन, ठीक है ना, जो कि ना बुतों में शामिल है और ना इबादत करने वालों में शामिल है। क्यों नहीं भाई, क्यों शयातीन ना बुतों में शामिल है ना इबादत करने वालों में शामिल है, इसकी वजह जरा बता दे। ये जो शयातीन है ना, ये ना बुतों में शामिल है और ना ये इबादत करने वालों में शामिल है, क्यों? आपने कहा था आपको सवाल पूछने के लिए, तो अब तो एकदम आखिर क्लास हो चुकी है, करने की कोशिश करते हैं। Because they are living beings that aren't human. नहीं, that's not the right answer. बहकाने वालों में शामिल है। देखिए, शयातीन जो है ना, वो बहकाने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन वो बुत तो नहीं है ना, ठीक है ना, ना वो बुत हैं और ना वो इबादत करने वाले। क्यों? इसलिए कि शयातीन जो है ना, इनके पास इल्म है, इनके पास इल्म है कि ये जो बुत है ना, ये कोई थोड़ी खुदा है, ये खुदा कोई थोड़ी है, ये कोई थोड़ी कुछ कर सकते हैं। शयातीन को ये बात पता होती है कि ये बुत जो है ना, ये इबादत के काबिल नहीं है, ठीक है ना। तो शयातीन क्या करते हैं, शयातीन बेसिकली जो है ना, वो लोगों को उल्लू बनाते हैं कि तुम इन बुतों की इबादत करो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, तुम इन बुतों के साथ जो है ना, वो उनको चढ़ावे चढ़ाओ और तुम उनकी जो है वो नाज न्याज करो और इनके मजारों के ऊपर जाओ, है ना, जिनके तुमने बुत बनाए हुए हैं, तुम उनके मजारों के ऊपर जाओ, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, तुम्हें औलाद मिल जाएगी, तुम्हारी औलाद अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे फलाने काम बन जाएंगे, तुम्हारा फलाने काम बन जाएंगे। ठीक है, ये झूठ बोल रहे होते हैं, हालांकि इनको पता है कि ऐसे काम नहीं बनते। ठीक है, अच्छा, ये जो शयातीन है, ये शयातीन जो है मिनल इनसेवल जिन, ये इंसानों में भी हैं और जिन्नों में भी हैं, ठीक है ना। तो जिन शयातीन को भी इस बात का इल्म है कि ये बुत जो है वो कोई खुदा नहीं होते, और जो इंसान शयातीन होते हैं ना, यानी बड़े इल्म वाले होते हैं, है ना, बहुत उनके पास इल्म होता है, उनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, लेकिन अपने नफ्स के पुजारी होते हैं, नफ्स की पूजा कर रहे होते हैं अपने, इस वजह से जो है ना, वो दूसरे इंसानों को बेवकूफ बनाते हैं कि ये जो बुत हैं, ये जो मदार वाले हैं, ये जो है ना, ये तुम्हारे मसले हल कर देंगे, ये तुम्हारे तुम्हें जो है वो तुम्हारी कामयाबी के जामिन है। ठीक है, तो उनको ये बात पता होती है, वो खुद इबादत नहीं करते, हाँ ऊपर से दिखाने के लिए कर लेंगे, लेकिन दिल में उनको पता है कि ये बुत इबादत के काबिल नहीं है। दिल में उनको पता होता है, उनका हकीकत पता होती है कि ये बुत इबादत के काबिल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो शयातीन है ना, मिनल इंस वल जिन, जिन्नों में भी ये होते हैं, जिन्नों में भी ये है, जाहिर जिन तो है सारे के सारे, और जो इंसानों में शयातीन होते हैं वो ना खुद बुत हैं और ना खुद वो इबादत करने वाले हैं, बल्कि दरअसल जो है ना वो इबादत पे लाने वाले हैं। अच्छा, इनको माबूद कह सकते हैं, इन शयातीन को माबूद कह सकते हैं, क्यों? इसलिए कि जो इबादत करने वाले लोग होते हैं ना, वो इनकी सारी बातें मानना शुरू कर देते हैं, है ना, इन शयातीन की सारी बातें मानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो ये कहते हैं ऐसे करो, ऐसे इबादत करो, ऐसे चादर चढ़ाओ, ऐसे जो है वो उनके आगे झुको, ऐसे जो है वो इनकी बात मानो, ऐसे ये करो, ऐसे करो, है ना। तो जो इबादत करने वाले लोग होते हैं ना, वो इन लोगों की सारी बातें मान लेते हैं, और इबादत दरअसल है ही ये, सारी बातें मान लेना, है ना, इसी को तो इबादत कहते हैं। इबादत का मतलब क्या है? मुतलकन अताअत। तो ये इन शयातीन की मुतलकन अताअत कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो शयातीन है, जो कि इंसान भी हैं और जिन भी हैं, इंसानों में भी हैं और जिन जिन तो हैं, ठीक है, इस वजह से ये शयातीन जो है ना, ये भी माबूद हैं, ये भी इन लोगों के माबूद हैं। सिर्फ बुत इनके माबूद नहीं है, बल्कि हकीकत में तो बुत माबूद है ही नहीं, हकीकत में तो ये शयातीन इनके माबूद हैं, शैतान की इबादत कर रहे हैं, क्योंकि शैतान की हर बात मान रहे हैं। तो इस तरीके से ये इबादत करने वाले भी जहन्नुम में, और जिनकी ये इबादत कर रहे हैं यानी शयातीन, वो भी जहन्नुम में, ठीक है ना। और ये जो लकड़ी पत्थर है, भाई लकड़ी पत्थर की क्या हैसियत है, वो जहन्नुम में जाए जन्नत में जाए, हमें हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। लकड़ी पत्थर का तो कोई ना तो उनके पास अकल है, ना समझ है, ना इल्म है, ना कुछ है, है ना। तो लकड़ी पत्थर को जहन्नुम में डाल देंगे भाई, ठीक है भाई। असल मसला तो शयातीन का है, और उन शयातीन की बात मानने वालों का है, वो सारे के सारे जहन्नुम में, ठीक है। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा था, तो लंबा चौड़ा सा जरा मीरास के बारे में सवाल था, तो उनसे कहा था कि भाई ये जनरल सवाल होते हैं, आप क्लास में कर लिया करें इस तरह के सवाल। तो उन्होंने जो सवाल लिखे थे वो अभी 2-3 मिनट पर उसको देख लेते हैं कि माँ बाप के मरने के बाद लड़की को जायदाद में कितना हिस्सा मिलता है। भाई वो मीरास के कवानीन है कि माँ बाप की जो मीरास होती है जिस, है ना, तो वो मीरास जो है ना वो 2 हिस्सा लड़के को मिलता है और 1 हिस्सा लड़की को मिलता है, ठीक है। ये मीरास का सीधा सीधा सा उसूल। अगर माँ बाप जिंदा हो, अगला सवाल था कि अगर माँ बाप जिंदा हो तो लड़की और लड़का दोनों को बराबर का हिस्सा मिलता है। भाई वो जिंदा है, जिंदा है तो फिर बराबर का हिस्सा मिलने की क्या बात है। हिस्सा मिलने का लफ्ज तो उस वक्त इस्तेमाल होगा ना जब वो मर जाए, दुनिया से चले जाए, अब उनकी जो छोड़ी हुई मीरास है तो वो 2 हिस्सा लड़के को मिलेगी और 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा, है ना। अगर वो जिंदा है तो फिर क्यों मिलेगा भाई, वो तो उनका है, ठीक है। तो आप पूछना ये चाह रही हैं, असल में आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर वो जिंदा हैं तो अगर वो अपने माल असबाब को बेटा बेटी में तकसीम करना चाहें तो क्या उनके लिए जरूरी है कि लड़के को जो है वो डबल दें और लड़की को सिंगल दें। अगर वो जिंदा हैं तो क्या उनके लिए जरूरी है कि लड़के को 2 हिस्सा दें और लड़की को 1 हिस्सा दें। असल में आप ये पूछना चाह रही हैं ना, सही कह रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो जब वो जिंदा है ना तो ये मिल्कियत उनकी है, माँ बाप की अपनी मिल्कियत है। जब किसी की कोई मिल्कियत होती है ना, अब उसके ऊपर मीरास के उसूल नहीं लगते, मीरास के उसूल नहीं लगते, अब उसके ऊपर जो है ना उसकी मर्जी है, वो जिसको जितना चाहे दे दे, है ना। लड़की को वो 2 हिस्सा दे दे, लड़के को 1 हिस्सा दे दे, उसकी मर्जी, है ना। लड़के को 2 हिस्सा दे, लड़की को 1 हिस्सा दे, उसकी मर्जी, ठीक है ना। ये जो मीरास के उसूल है ये तो मरने के बाद लगते हैं, ठीक है ना, जब वो दुनिया से चले गए ना। अब ठीक है, तो लड़की को 3 हिस्सा भी दे सकते हैं और लड़के को 1 हिस्सा भी दे सकते हैं, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पहले इनकार कर दे जायदाद से और फिर 10-12 साल के बाद कहे कि मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है जबकि जायदाद उस वक्त ना हो। माँ बाप के दौर में उन्होंने इनकार, यानी जब माँ बाप जिंदा थे तो बेटी ने इनकार कर दिया या बेटे ने इनकार कर दिया कि मुझे आपकी मीरास नहीं चाहिए, और माँ बाप के मरने के बाद हिस्सा लेने के लिए है, तो क्या और लड़कियों को हिस्सा मिलेगा। किसी एक औलाद ने कह दिया था माँ बाप से अपनी उनकी जिंदगी में कि जी मुझे आपके मिरास में से हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है, तो जब वो मर गए तो फिर उसके बाद क्या इनको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर आपको किसी मुफ्ती से फतवा लेना होगा, मुझे इसका एग्जैक्टली तरीका नहीं पता कि जिसने इनकार कर दिया है, मुझे याद नहीं है कम से कम कि अगर किसी ने जिंदगी में कह दिया था कि मुझे आपका हिस्सा नहीं चाहिए, तो अब उससे कोई स्टैम्प पेपर के ऊपर कोई लीगल डॉक्यूमेंट गवाहों के सामने अगर इस तरह से लिखवा लिया जाए कि जी उनको हिस्सा नहीं चाहिए, तो क्या मरने के बाद वो अपना हिस्सा डिमांड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसका जवाब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे जहन में नहीं है, ठीक है, किसी और जो आलमा है मौजूद क्लास के अंदर अगर उनको इसका जवाब पता है तो प्लीज आप यहाँ पे लिख दीजिए उसका जवाब, ठीक है, कि अगर माँ बाप की जिंदगी में किसी औलाद ने कह दिया था कि मुझे नहीं चाहिए और शरी तौर पर उसके बाकायदा गवाहों के सामने उसने डॉक्यूमेंट भी साइन कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, तो क्या मरने के बाद वो डिमांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसका जवाब जो है ना वो अभी आगे साहब को नहीं दे सकता, पूछ पूछ लेंगे या कहीं फतवे में देख लेंगे किसी को, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट भी कोई नहीं है ऐसी कुछ नहीं, जब लिख दिया तो नहीं मिलेगा। अच्छा SRF बोल, ठीक है जी, अच्छा इन्होंने शायद कहीं फतवा पढ़ा हुआ है कि नहीं, जब लिख दिया तो नहीं मिलेगा, और अगर नहीं लिखा तो फिर कोई लीगल अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट वगैरह बाकायदा गवाहों की मौजूदगी में नहीं है। अच्छा इन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा था कि अगर लिख करके गवाहों की मौजूदगी में जिसको कहते हैं ना लिख लिया, स्टैम्प पेपर भी वही होता है, गवाहों की मौजूदगी में आपने कोई चीज साइन करी उसी को स्टैम्प पेपर कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने कोई चीज कर ली है ना तो फिर मरने के बाद आप डिमांड नहीं कर सकते कि जी मुझे मेरा हिस्सा दें, जैसे कि मीरास के उसूल में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, अब आप डिमांड नहीं कर सकते। अलबत्ता एक चीज इसके अंदर ये याद रखें कि ये जो है ना कि नहीं चाहिए, इसके लिए उस शख्स को जो ये कह रहा है बेटा या बेटी जो भी जो ये कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, लाजमी है कि वो बालिग होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी नाबालिग ने कह दिया जो कि अभी शरी तौर पर बालिग नहीं हुआ, उसने अगर कह दिया कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसकी बात रद्द कर दी जाए, उसकी बात का कोई एतबार नहीं, नाबालिग की बात का एतबार नहीं किया जाता, उसको तो दिया जाएगा हिस्सा, चाहे वो कह दे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, उसकी बात को नहीं माना जाएगा, उसको दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने मुफ्ती से पूछा हुआ भी है तो फिर इस वजह से आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अपनी क्लास रोकते हैं, बाकी इंशाल्लाह की क्लास में आप दावाना। अच्छा जेवर कैसे बांटा जाएगा ये भी बता दीजिए, जेवर कैसे बांटा जाएगा, तो जेवर के बांटने के लिए उसका वजन किया जाता है, उसकी जो है वो कीमत मालूम की जाती है, और उसके हिसाब से या तो उसको बेच दिया जाता है और फिर कीमत जो है वो आप वारिसों में बांट दी जाती है, या उसको अगर बाकायदा वजन के हिसाब से उसके हिस्से बनाए जा सकते हैं तो फिर वो हिस्से बना करके औलाद के अंदर बांट दिए, वारिसों में बांट दिए जाते हैं। बराबर बराबर नहीं, जितना हिस्सा शरीयत ने कहा है ना, अगर बेटा है और एक बेटी है, ठीक है, तो बेटे को दो हिस्से मिलने हैं और बेटी को एक हिस्सा मिलना है, तो जेवर कभी बिल्कुल ऐसे ही बांट होगी ना उसकी, ठीक है। ये भी होता है कि सारी चीजों की एक वैल्यू निकाल ली और फिर उसके मुताबिक जो है ना वो आपने उसको बांट दिया, बेच दिया आपने जेवर, और फिर उसका जो पैसा मिला उसको आपने रकम के अंदर ऐड कर लिया, अब उस रकम को जो है वो बहुत आसान हो जाता है कि इनको दो हिस्सा दे दिया, इनको एक हिस्सा दे दिया। ये सब ये जो मीरास की तफसीलात है ना, ये लाजमी होता है कि आप बाकायदा किसी दारुल इफ्ता में जाएं, किसी मुफ्ती के पास बैठें और उनके साथ ये सारी चीजें तय करें, ठीक है ना। ये हाई लेवल उसूल तो क्लास में बताए जा सकते हैं, लेकिन ये बाकायदा किसी की मीरास बांटना जो है ना, ये क्लास में बैठकर ही नहीं पढ़ा जा सकता, इसके लिए मुफ्ती साहब के पास जाना लाजमी है, ठीक है, उसके बगैर हो नहीं सकता काम, ठीक है। चले, अस्सलाम वालेकुम।